विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का पहला अधिकार क्षेत्र बन गया है जिसने मजदूरी की चोरी को आपराधिक बनाने वाले कानूनों को लागू किया है। यूनियन और इंडस्ट्री एडवोकेट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी की चोरी बहुत ही आम बात है और वो अन्य राज्यों और टेरिटरीज से विक्टोरिया के इस नेतृत्व को अपनाने का आग्रह कर रहे हैं। विक्टोरिया में ये नया कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है जिसके अंदर अब नियोक्ता के लिए जानबूझकर कर्मचारियों को कम वेतन देना एक अपराध है। तथाकथित वेतन चोरी कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि अपराधी व्यक्तियों के लिए 10 साल की जेल और लगभग $2,00,000 का फाइन या कंपनियों को 1,000,000 के करीब तक जुर्माने के साथ में दंड भरना पड़ सकता है। विक्टोरियन ट्रेडर्स हॉल काउंसिल के सचिव ल्यूक हिलाकारी का कहना है कि वो इस बदलाव का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्य और क्षेत्र शीघ्र ही इसका पालन करेंगे।
In leading the way in working reforms. We were the first place in the world to come up with the 8-hour day. This is just another step in which we're leading the world and saying, actually, when someone goes to work, they deserve to be paid for every hour that they're there for.
इस कानून का उद्देश्य है कि मजदूरी चोरी के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य हो। विक्टोरियन यूनियन आंदोलन का कहना है कि वो नवनिर्मित वेज इंस्पेक्टोरेट विक्टोरिया के माध्यम से उन मुकदमों को चलाने पर जोर देगा और इसके पास वेतन चोरी के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। इसके लिए दस्तावेजों का निरीक्षण और जब्त करने के लिए इसके निरीक्षक एक व्यवसाय के मालिक के कार्यस्थलों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। एक प्रवासी श्रमिक और थाईलैंड में पैदा हुई छात्रा अंजलि सुवान ने एक दशक तक विक्टोरिया में काम किया और महामारी से पहले जापान के लिए देश छोड़ दिया। सुश्री सुवान ने SBS न्यूज़ को बताया कि वो कम भुगतान का शिकार थी।
I felt like as a student, as an international student, you pay higher fee to study and you have 20 hours per week to find a job. Like by law, by my visa, you know, descriptions, and that 20 hours, I can't really, like at the beginning of my visa, I couldn't really communicate in English. So I have to find a job that less skilled in communication. So I started kitchen hand working. So I think this is, yeah, very important for especially international students to be able to cover all that cost.
सुश्री सुवान ने एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रा के रूप में ऑस्ट्रेलिया में काम करते समय अपने अनुभव और संघर्षों के बारे में अधिक जानकारी दी कि वो किस तरह से बस मुश्किल से ही किराए का पैसा कमा पाती थी और दो वक्त का खाना जुटा पाती थी।
Never. So I let's say I work from 5 o'clock to 11 p.m. after school time at the as a kitchen hand, and per shift I get $50. The whole shift, I get only $50. I can eat there. For dinner, and I can take one box of container, like five riders say, home. So I get like a two meal, then $50, and that may be for 4 days a week, and so I earn like $200 just to cover the rent, and that's it. I don't know who to talk to. I don't know who to complain to. It seemed like all the international students facing the same issue.
अब आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पिछले साल मार्च 2020 में विक्टोरियन लेबर सरकार ने व्यवसायों और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सामान्य अंडर पेमेंट मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से वेज थेफ्ट बिल 2020 पेश किया था। ये विधेयक 16 जून 2020 को पारित किया गया था और अब ये अधिनियम 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ। अधिनियम उन नियोक्ताओं के लिए आपराधिक प्रतिबंध लगाता है जो बेईमानी से किसी कर्मचारी के सभी अधिकारों या उसके किसी एक हिस्से को रोकते हैं। नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए या पहले से प्राप्त वित्तीय लाभ को छिपाने के लिए उस कर्मचारी की पात्रता रिकॉर्ड को गलत साबित करे, या नियोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए या पहले प्राप्त वित्तीय लाभ को छिपाने के लिए कर्मचारी पात्रता रिकॉर्ड रखने में विफल रहे। एक कर्मचारी पात्रता यानी एम्प्लॉई एंटाइटलमेंट का अर्थ है कि किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को दे कोई राशि या लाभ है। इसमें प्रासंगिक कानूनों, अनुबंधों और समझौतों के अनुसार मजदूरी या वेतन, भत्ते, छुट्टी का अधिकार, भोजन के अवकाश या सेवानिवृत्ति शामिल है। श्री हिलाकारी कहते हैं कि राज्य में मजदूरी की चोरी बहुत आम है और अधिक कदम उठाए जा रहे हैं।
Wage theft is happening up and down every main street in Victoria. Every second cafe you pass, a worker is losing money. It could be wages directly, it could be superannuation. This will make a difference to hundreds of thousands of Victorians. Victorians will be able to, for the first time, properly get what they earn. And if they don't, the employer can face severe penalties. So the next stage is for the Victorian government to put together a small claims jurisdiction, hopefully as part of the magistrate court. It should have very speedy proceedings in which it will be a low-cost court in which for a small amount of money, a worker can go there, be representative and get their money back in a timely fashion with experts who know what they're talking about. That's yet to be fully implemented, but we're hopeful to get there by the end of the year.
अब ये अपराध एक नियोक्ता के भीतर काम कर रहे नियोक्ताओं और व्यक्तियों पर लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति पर इस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है यदि वे किसी नियोक्ता संस्था के अधिकारी हैं, यानी ऑफिसर हैं। अधिकारी यानी ऑफिसर की परिभाषा तो व्यापक है और मालिकों और कंपनियों के निदेशकों तक ही सीमित नहीं है। अब ये परिभाषा इकाई यानी एंटाइटी के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके पास कंपनी के निदेशकों, कार्यालय धारकों या भागीदारों सहित प्रमुख निर्णय लेने की क्षमता होती है। अभी ये तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि नया कानून मौजूदा फेयर वर्क एक्ट 2009 के साथ कैसे रहेगा, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि समान आचरण के संबंध में नियोक्ताओं की जांच वेज इंस्पेक्टोरेट और फेयर वर्क लोकपाल दोनों द्वारा की जा सकती है। SBS न्यूज के लिए बीवा खान और मार्कस मेगालोकोनोमस की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया SBS हिंदी के लिए अनीता बरार ने।